नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में हवाई यातायात और बैंकों सहित अनेक सेवाएं बाधित। सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालों को सभी आपराधिक मुकदमों से पूर्ण छूट प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 पर सुनवाई के लिए सहमत। केंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के तहत 1,00,000 खेल प्रतिभाओं की पहचान करेगा। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 39 हुई और श्रीलंका में आज शाम एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़े उद्योगों, बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का कामकाज बाधित हुआ है। भारत में इंडिगो, अकासा और स्पाइसजेट एयरलाइंस का कामकाज पूरे देश में प्रभावित हो गया है। पूरे विश्व में एयरलाइंस का कहना है कि उनकी चेक इन प्रणाली में सुबह से ही गड़बड़ हो रही है। वे अभी समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। भारत में मुंबई हवाई अड्डा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर कामकाज में सबसे अधिक बाधा टर्मिनल 2 पर आ रही है। ये गड़बड़ी कथित तौर पर अमरीका स्थित साइबर सुरक्षा प्रदाता क्राउड स्ट्राइक से संबंधित है। इसका फाल्कन सेंसर सुरक्षा डेटा इकट्ठा करने के लिए कई व्यावसायिक कम्प्यूटरों पर स्थापित किया गया है। क्राउड स्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि उसे फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज के क्रैश होने की जानकारी मिली है। कंपनी ने कहा है कि उनकी इंजीनियरिंग टीमें इस समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रही हैं। सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा कल शाम जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करना सुगम बनाने के उद्देश्य से 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है, जो संसदीय एजेंडा तय करती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री बिरला होंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। यह अनुच्छेद राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से छूट प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पश्चिम बंगाल राजभवन की एक पूर्व महिला कर्मचारी की याचिका पर दिया गया है। इस याचिका में राज्यपाल सीवी आनंद द्वारा कथित छेड़छाड़ करने और वहां के अधिकारियों द्वारा उस महिला कर्मचारी को गलत तरीके से कैद करने से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने महिला की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में भारत संघ को पक्षकार बनाने की स्वतंत्रता दी। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। न्यायालय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2023 बैच की एमबीबीएस छात्रा सुरभि कुमारी को गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के रामगढ़ जिले की मूल निवासी सुरभि कुमारी ने कथित तौर पर पेपर लीक मामले के दोषियों के लिए नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र हल किए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी के एक मुख्य सहयोगी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा को गिरफ्तार किया है। उसे एक प्रमुख आतंकी संगठन को घातक हथियारों की आपूर्ति करने से जुड़े मामले में पकड़ा गया है। एनआईए ने कल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के निवासी बलजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया। एजेंसी के अनुसार बलजीत सिंह को पंजाब में लांडा के एजेंटों को हथियारों का मुख्य आपूर्तिकर्ता माना जाता है। एजेंसी की जांच में पता चला है कि बलजीत सिंह ने खालिस्तानी आतंकवादी सतनाम सिंह सत्ता को भी हथियारों की आपूर्ति की थी। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज कहा कि रक्षा क्षेत्र और युद्ध में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वायुसेना की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एयर मार्शल सिंह ने एयर एंड मिसाइल डिफेंस इंडिया सेमिनार तथा प्रदर्शनी 2024 में उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि वायुसेना के बढ़ते महत्व को देखते हुए इसे प्रत्येक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास से जोड़ने की जरूरत है। संचार और डेटा के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सेनाओं को मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की शुरुआत अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ हुई है। बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार कृषि क्षेत्र में सुधार और गांवों में खर्च बढ़ने से मांग की स्थिति बेहतर हुई है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ा है और ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य लोगों को असुविधा होती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर ऐसे वाहनों से दोगुना शुल्क वसूल करने को कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य एक मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि कीर्ति परियोजना का उद्देश्य शहरों, गांवों, जनजातीय और हिमालय क्षेत्रों से खेल प्रतिभा को तलाशना है।
स्पोर्ट्स में रही टैलेंट उसको आइडेंटिफाई करना, ऑल टाइप ऑफ व्यवस्था देके उसकी स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे और स्वयं भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। फेज टू है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 100 दिन के कार्यक्रम में तय करा है कि हमें 1,00,000 स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपॉर्चुनिटी देना है।
कीर्ति पहल का उद्देश्य सभी राज्यों द्वारा 2024-25 में 20 लाख एथलीटों के मूल्यांकन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इससे पहले कीर्ति के पहले चरण का उद्घाटन इस वर्ष मार्च में चंडीगढ़ में किया गया था। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में खेलों की प्रमुख भूमिका होगी। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में भारत के ओलंपियन और पैरालंपियनों के साथ एक संवाद सत्र में कहा कि विविधता से पूर्ण जनसंख्या वाले भारत में अत्यधिक संभावनाएं हैं। 2004 एथेंस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारतीय ओलंपिक दल से उम्मीदों के बारे में बताया।
मैं इतना कह सकता हूं, हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी तैयारी है। खिलाड़ी मेंटली तौर पे फिट है, फिजिकली तौर पे फिट है और जो भारतीय जो पैरालंपिक या ओलंपिक में जो दल जा रहा है, मुझे उम्मीद है बहुत शानदार परफॉर्मेंस, वो अच्छा खेलेंगे। जब हम ओलंपिक पैरालंपिक में जाते तो हमारा सिर्फ मकसद यही रहता, हमें अच्छे खेल परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। यदि हम परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो मेडल आएंगे। सभी खिलाड़ियों को पेरिस पैरालंपिक और ओलंपिक में जा रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए बिना भी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। श्री चौहान ने लखनऊ में प्राकृतिक खेती विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करेगी।
एक व्यापक जागरूकता का अभियान, किसानों के बीच जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सारे देश के किसानों के सामने रखने। हम कम से कम 1 करोड़ किसानों तक जिनको प्राकृतिक खेती की विशेषता और आज की समस्या है उससे अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनमें से कन्विंस होकर कम से कम 18,00,000 किसान ऐसे निकले जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक खेती उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सभी 6 कृषि विश्वविद्यालयों को सर्टिफिकेशन लैब को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। मीडिया की खबरों के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणालियों में सुधार की मांग करने वाले विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। इस अशांति के कारण टेलीविजन न्यूज चैनल का प्रसारण बांग्लादेश में बंद है, दूरसंचार सेवाएं बाधित हैं। इन प्रदर्शनों के कारण देश में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने अपने नागरिकों को यात्रा से बचने का परामर्श दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान उनकी हत्या के प्रयास के बाद अमरीकी लोगों से मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनका संकल्प अटूट है और वे अमरीकी लोगों की सेवा करने वाली सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए रक्षा क्षेत्र की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनी लॉकहीड मार्टिन की प्रतिबद्धता की सराहना की है। लॉकहीड मार्टिन के कार्यकारी अधिकारी जिम टैकलेट ने कल श्री मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन भारत अमरीका एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक सहयोग में एक प्रमुख भागीदार है। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री क्वात्रा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं निखिल कुमार।
श्रीलंका में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज वर्तमान चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। ये मैच दामुला में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच हो रहा है। इस टूर्नामेंट में शामिल 8 देशों को 2 समूहों में बांटा गया है। भारत ने इससे पहले 2022 में महिला एशिया कप जीता था और अब तक 7 बार एशिया कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है। उधर न्यूजीलैंड में चल रही राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के तलवारबाजों ने 1 रजत 3 कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। इस बीच 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक्स के लिए खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने एचएस प्रणॉय के ट्रेनर रोहन जॉर्ज मैथ्यूज को पेरिस में रहने के दौरान खर्च उठाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उधर नीदरलैंड्स में आज से शुरू हो रहे डच महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में त्वेसा मलिक भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। उनके साथ वाणी कपूर और रिद्धिमा दिलावरी भी शामिल हैं। टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल आज शाम स्वीडिश ओपन में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के मारियानो नवोन से भिड़ेंगे। मैच भारतीय समय के सर शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा।
आंध्र प्रदेश के कई तटीय हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण पूरे राज्य में बारिश हो रही है। पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए मिले सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये कार्यक्रम इस महीने की 28 तारीख को प्रसारित होने वाला है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में हवाई यातायात और बैंकों सहित अनेक सेवाएं बाधित। सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालों को सभी आपराधिक मुकदमों से पूर्ण छूट प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 पर सुनवाई के लिए सहमत। केंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के तहत 1 लाख खेल प्रतिभाओं की पहचान करेगा। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 39 हुई और श्रीलंका में आज शाम एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।